भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 20 3.20
कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपशन् कर्तुरमर्हसि.
शिल प्रभुपाद जी के द्वारा. शिल प्रभुपाद की जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की. अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए.
ओम अज्ञात निरांधस्य ज्ञानानुजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च उपासिन्दुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. शिल प्रभुपाद की जय. इस श्लोक में हम देख रहे हैं कर्म नहीं वही संसिद्धि आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि. अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है. अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए. अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान तीसरे का नाम ले रहे. हम कभी कभी बोलते हैं ना, देखो वो फलाने पड़ोसी ने भी ऐसा ही किया, हमको घर में फ्रिज चाहिए, देखो पड़ोसी के घर में भी बराबर वही है एलजी का फ्रिज. तो पड़ोसी का है मतलब अर्थात ये पुष्टि हो रही इस बात से कि हमको भी चाहिए. ऐसे ही सांसारिक जीवन में हम ऐसे उदाहरण देते रहते हैं. कोई बड़े व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, उसने भी तो ऐसे किया. कोई बड़े व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, वह भी तो झूठ बोलता है. इस कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि हम उल्टी बातें गिनते हैं, उल्टी बातों का उदाहरण लेते हैं, अच्छे व्यक्तियों की बुरी बातों का उदाहरण लेते हैं. उदाहरण देते वक्त अच्छे व्यक्ति का एखादा दोष यदि हमको दिख गया तो अच्छे व्यक्ति के अच्छे गुणों का हम उदाहरण नहीं देते. हम क्या करते हैं, अच्छे व्यक्ति के एखादे दोष को उजागर करके उसको हम दूसरों को भी उजागर करने के लिए, आत्मसात करने के लिए कहते हैं. परंतु भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो महाराज जनक वह भी नियत कर्म कर्तव्य कर्म करते थे. अर्थात भगवान अपनी बात करते हुए कर्म करने का जो मुद्दा भगवान ने रखा है उसको पुष्ट करने के लिए भगवान एक महान व्यक्ति का नाम लेते हैं, महाजन, बहुत ही महान राजा, उनका नाम ले रहे ताकि वो जो बात कर रहे हैं उसको पुष्टि मिले कि वो ऐसी व्यर्थ की बात नहीं कर रहे, जो वो बात कर रहे हैं वैसा प्रैक्टिकल कुछ लोगों ने किया है। उदाहरण है महाराज जनक, इसमें कहा है जनक आस्थिता जनकाद जनक आदि, तो कर्म नहीं वही संसिद्धिम आस्थिता जनकाद, कर्म के द्वारा ही जनक आदि राजाओं ने परम सिद्धि प्राप्त की है। कर्म की व्याख्या क्या है वास्तव में, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था अनासक्त होकर व्यक्ति यदि कर्म कर सकता करता है, अनासक्त होकर यदि कोई व्यक्ति कर्म कर सकता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, परम गति प्राप्त, परम गति प्राप्त होती है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है यदि कोई व्यक्ति अनासक्त होकर अपने कर्म करता है, अनासक्त होकर, ऐसा पिछले श्लोक में कहा था। अब प्रश्न यह है, क्या प्रश्न है, ऐसे कौन से कर्म करना चाहिए, अनासक्त होकर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए और कौन से कर्म करना चाहिए, अनासक्त होकर सिनेमा देखना चाहिए, आप बोले अनासक्त होकर सिनेमा देख रहे तो सूट होगा, अनासक्त होकर सिनेमा देखना ये कुछ अपने आप में विरोधाभास है। तो अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए तो कौन से कर्म करना चाहिए भाई, कोई व्यक्ति कुछ कुछ कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि हमको कोई आसक्ति नहीं है, कभी कभी हम सोशल ड्रिंक हफ्ते में एक आध बार पार्टी में सोशल ड्रिंक होता है तो हम जाते हैं, अनासक्त हम कोई आसक्त नहीं, हम टीवी सिनेमा देखते हैं लेकिन हम कभी कभी अनासक्त हैं, तो कौन से कर्म अनासक्त होकर करना चाहिए, मान लो अनासक्त होके सिनेमा देखना चाहिए था, अनासक्त होके कर्तव्य कर्म करना चाहिए का अर्थ क्या है, कौन से कर्म करना चाहिए, शास्त्र पे आधारित कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान ने जो पिछले श्लोक में कहा था, क्या कहा था, प्रथम पंक्ति में कहा था कार्यम कर्म समाचरण, पिछले श्लोक में क्या कहे थे भगवान, कार्यम कर्म समाचरण, अर्थात कर्तव्य कर्म को होना चाहिए, कर्तव्य कर्म कर अर्थात क्या, अर्थात वर्णानुसार स्वाभाविक कर्म करना चाहिए, वर्णानुसार स्वाभाविक कर्म करना चाहिए और वो भी आसक्ति रहित, स्वाभाविक कर्म करना चाहिए और भी आसक्ति रहित होना चाहिए। स्वाभाविक कर्म क्या है कैसे समझेंगे, क्या है स्वाभाविक कर्म,
जो गुण मिले हैं वो सबसे जन्म के
जन्म कर्म
जन्म मिले
वर्ण और आश्रम के अनुसार जो स्वभाव हो जाता है उस स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। उदाहरण है, मान लो कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के पास गाय है, 10 गायें हैं और उस गाय का दूध निकाल के वो बेचता है, तो क्या है उसके ऊपर उसकी उपज उपजीविका चला रहा है, तो उसके लिए पाप है कि पुण्य है, उसके लिए वो पाप। वही एक वैश्य ये काम कर सकता है, वो गाय का दूध निकाल के बेच सकता है, उसके अपनी उपजीविका कर सकता है, व्यापार कर सकता है। और तो एक ब्राह्मण गायों का पालन करके उसका दूध निकाल के उसके ऊपर उसका व्यापार नहीं कर सकता, यदि वो ऐसा करेगा तो वो पाप, उसके लिए वो पाप है। तो स्वाभाविक कर्म क्या है, स्वभाव के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए, स्वभाव के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए, अर्थात जो शास्त्रों में सभी के लिए कर्म वर्णित है उस प्रकार से कर्म करना चाहिए। इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, परिस्थिति के अनुसार क्षत्रिय ने तुमने क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए कर्तव्य कर्म है। अर्जुन का कर्तव्य कर्म क्या है, क्षत्रिय, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका कर्तव्य कर्म है, परंतु अर्जुन घोर कर्म समझ रहे उसको। अर्थात भगवान ये कहना चाह रहे कि भाई तुम जिसको घोर कर्म समझ रहे हो वो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, और वो कर्तव्य कर्म करने से तुमको परम गति प्राप्त होगी। पिछले श्लोक में क्या कहा है, समाचर, क्या कहा है कि आपको कैसे कर्म करता कर्म, कार्यम कर्म समाचर, अर्थात ऐसे कर्तव्य कर्म करना है अनासक्त होकर, उससे ऐसे कर्तव्य कर्म करोगे तो क्या होगा, परम गति प्राप्त होगी। और जिससे तुमको परम गति प्राप्त होगी अर्जुन, उसी को तुम घोर कर्म समझ रहे हो। कितनी बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई, जिसको करना, जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उसी को हम घोर कर्म समझ, जो हमारा इस जीवन में मनुष्य शरीर का कर्तव्य कर्म है उसी को हम क्या समझते हैं, घोर कर्म समझते हैं। तो इसमें कहते एवं तथा ही शब्दों को कर्मणा एव ही ऐसा कहा गया है, विशेषकर एव अर्थात केवल और ही अर्थात निश्चित रूप से। भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि जिस कर्म को अर्जुन घोर कर्म समझ रहे हैं, केवल एव कहा है अर्थात केवल वही कर्म अर्जुन को परम गति प्रदान करेंगे, यह निश्चित है। यहां क्या कह रहे, एव ही कर्मणा एव ही, अर्थात जिसको अर्जुन घोर कर्म समझ रहे हैं वो उनके कर्तव्य कर्म है, और वो केवल और केवल वो कर्म करने से निश्चित रूप से उनको परम गति प्राप्त होगी। कितनी गारंटी, कर्तव्य कर्म करने से परम गति प्राप्त हो जाए, भगवान इतनी गारंटी उसे गारंटी के साथ कह रहे हैं। अब यह बात सिद्ध करने के लिए भगवान जनक जैसे राजाओं का उदाहरण दे कि इन्होंने परम गति कैसे प्राप्त की, कर्तव्य कर्म। पूर्ववर्ती राजा जनक जैसे अनेक राजा होके गए, परंतु इन्होंने विशेष रूप से महाराज जनक का उदाहरण लिया, वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय धर्म का पालन करते ही करते ही उन्होंने परम गति को प्राप्त किया, महाजन बन गए। महाराज जनक वैरागी बन गए थे क्या, नहीं, क्षत्रिय थे, राजा थे, संसारी जीवन में थे, है कि नहीं, फिर भी परम गति को प्राप्त हुए। और कृष्ण उनका उदाहरण दे, कोई साधारण व्यक्ति किसी का उदाहरण दे तो ठीक बात है, भगवान स्वयं उनका उदाहरण दे रहे, देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा है, अर्थात समझो जनक महाराज कौन से स्तर पे होंगे, नहीं, भगवान जिनका उदाहरण दे रहे हैं वो व्यक्ति कैसे होंगे, इतना श्रेष्ठ व्यक्तित्व है उनका। इसमें फिर कहते हैं समसिद्धिम, समसिद्धिम अर्थात सम तथा सिद्धि, सम अर्थात सम्यक, या सम्यक रूप से, या उसको आप अच्छी प्रकार से भी समझ सकते हैं, सम अर्थात अच्छी प्रकार से, सिद्धि अर्थात सिद्ध होना, कार्य पूर्ण होना, अर्थात अच्छी प्रकार से पूर्ण होना, अच्छे प्रकार से पूर्ण होना। इसलिए संसिद्धि अर्थात कार्य का, या कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से पूर्ण करना, इसी को हम शुद्ध भाषा में कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि प्राप्त हो गई, सिद्ध हो गया कार्य, सिद्धि प्राप्त हो गई। तो अच्छी तरह से कार्य पूरा होना या पूरा करना, उसको कहते हैं संसिद्धि। मनुष्य जीवन की संसिद्धि का अर्थ क्या है, बताइए सब। संसिद्धि इस शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से कार्य पूरा होना,
भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त,
भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। तो मनुष्य जीवन का संसिद्धि, मनुष्य जीवन का कार्य संसिद्धि क्या है, सिद्धि क्या है? संसिद्धि अर्थात जो सिद्धि पूर्ण कर सकते हैं, जो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी तरह से सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन की सिद्धि क्या है?
बैक टू गॉड हेड,
है ना? और किसी की और दूसरी को यह संसिद्धि,
कृष्ण की सेवा करना,
कृष्ण की सेवा। और
मुझे पता है वर्ण आश्रम के अनुसार आसक्तिहीन रह के कार्य करना,
आसक्तिहीन रह के, आसक्ति रहित रह के,
अनुसार के दूसरे के धर्म के अनुसार नहीं, अपने
अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हुए करना। और नाम संकीर्तन करना, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अपने कार्य करना,
मैं और मेरा का भाव न रख के भी कार्य करना,
मैं का भाव न रख के कार्य करना,
सेवा भाव से,
सेवा भाव से कार्य,
सेवा भाव से जो भी सेवा मिले वो कार्य करना। संसिद्धि यानी
मुक्ति प्राप्त करना, हाँ वही जन्म मरण से मुक्ति। मुक्ति पाके फिर कहीं कहाँ जाएंगे? मान लो जन्म मरण से मुक्त हो गए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं तो जाना पड़ेगा ना। अभी शरीर से आत्मा निकल गया, मुक्त हो गया, अब कहाँ जाएंगे? कुछ वो भी जगह मालूम होना चाहिए ना, कहाँ जहाँ जाना है, है? हमको जहाँ, हम जहाँ जाना चाहते हैं, हमको जहाँ जाना है वो जगह की तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं? मुक्ति चाहिए, मुक्त होंगे, शरीर छूटेगा, मुक्ति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात जाएंगे कहाँ? Where to go? वो पता, मुक्ति के पहले वो पता होना जरूरी है। तो वो पता करना ही शास्त्र का उद्देश्य है। शास्त्र में कहा गया है कि कहाँ जाना है। हम मुक्ति कहते हैं, मुक्ति तो बहुत सी बातों को मुक्ति कहा गया है। पेट में बहुत दर्द हो गया, अभी दर्द दो दिन बाद शांत हो गया, दर्द कम हो गया, अभी मुक्ति हो गई, दर्द से मुक्ति हो गई। मुक्ति अनेक प्रकार की है, परंतु ऐसी मुक्ति जो आनंद दे सके, जिसमें सेवा हो सके भगवान की, और जिसके कारण भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त हो, उसको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति अर्थात माया से मुक्ति। माया से मुक्ति कैसे मिलेगी? बिना भगवान के तो माया ही है ना। यदि भगवान नहीं है तो माया ही है। और माया से मुक्ति चाहिए अर्थात हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? भगवान चाहिए। भगवान हो गए तो माया नहीं रहेगी, माया रहेगी तो भगवान नहीं रहेगी। तो भगवान चाहिए तभी जाके माया का प्रभाव नहीं होगा। तो भगवान को नित्य हमारे पास रखना ही वास्तव में मुक्ति है। भगवान के सानिध्य में रहना ही वास्तव में मुक्ति है। बाकी कोई मुक्ति नहीं है, दूसरा मुक्ति का कोई प्रकार नहीं है। भगवान का सानिध्य, भगवान की कृपा, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति ही वास्तविक मुक्ति है। अन्यथा सारे प्रकार की मुक्ति कभी ना कभी फिर हमको बंधन में डाल दे। तो इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन की संसिद्धि का अर्थ क्या है, हमें जिस कार्य के लिए यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसे अच्छी तरह करके, अच्छी से अच्छी तरह करके क्या करना है? सिद्धि प्राप्त करना है। हमको जिस कार्य के लिए यहां पे भेजा गया है, या हम जिस कार्य के लिए यहां पे आए हैं, हम जिस कार्य के लिए यहां पे आए हैं उस कार्य को अच्छी तरह से करना और अच्छी तरह से पूर्ण करना, यह मनुष्य जीवन की संसिद्धि है। अब हमारा प्रश्न था कि हम किस कार्य के लिए यहां आए हैं।
भगवान को प्राप्त करने की, ये कार्य के लिए हम यहाँ आए हैं। और पापों का प्रायश्चित करने के लिए,
इसी के लिए मिला है
प्रायश्चित करने के लिए, कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए। और हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं उसको अच्छी तरह से पूर्ण करना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो हम किस कार्य के लिए आए हैं, तो बहुत सारे उत्तर बताए गए। प्रायश्चित करने के लिए, अपने कर्जे को चुकता करने के लिए, और
जीवात्मा और भगवान के बीच में जो संबंध है वो जानने,
संबंध को जानने के लिए। और
जो भी शास्त्र आधारित हम जानते हैं उसका प्रचार करने के, हम तो जान लिए पर प्रचार भी नहीं किए तो भी वो हमारी सिद्धि नहीं गिनी जाएगी।
प्रचार करने के लिए
कि मैं ही सिर्फ जानता हूँ, दूसरे को मैं नहीं बताऊंगा तो उसकी मेरी सिद्धि गिनी नहीं जाएगी, तो मेरे तक ही सीमित रहेगा।
प्रचार करने के लिए और किस लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हो, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए। 10 कारण तो हो गए अभी नहीं, अब आप मुझे ये बताइए,
कर्तव्य कर्म
कर्तव्य कर्म
करने के लिए,
भगवत सेवा करने के लिए। नहीं, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ, और कुछ है वो भी बोलिए। जितने भी कारण बताए हैं, ये हमारा जीवन ये इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए मिला, हमको मिला है। अभी हमारे जीवन का जो भी पार्ट हो चुका है, जितना भी पार्ट हो चुका है, अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या वास्तव में हमने अपने जीवन का उपयोग उसके लिए किया? कितना पार्ट, जितना जीवन हमारा बीत गया है उसमें से कितना परसेंट हमने अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसके पूर्ति के लिए, अच्छी तरह पूर्ण करने के लिए व्यतीत किया? 20 साल तो ऐसे ही गए, आगे के 5-10 साल तो फिर वो भी वैसे ही गए, पहले ऐसे गए फिर वैसे गए, अब कैसे जा रहे वो भी पता नहीं है। तो हम लोग ऐसे वैसे में ही चले जाते हैं, ऐसे वैसे करते करते निकल जाते हैं, और अंतिम क्षण हमको पश्चाताप मिलता है, बहुत पश्चाताप। उसकी हम इस समय कल्पना भी नहीं कर सकते, कितना पश्चाताप। मृत्यु के निकट जो व्यक्ति है वो रोते रहता है, क्यों रोता है बोल नहीं पाता है, लेकिन रोता है, आंखों में अश्रु बहते हैं, क्योंकि पश्चाताप होता है, बहुत पश्चाताप। बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ नहीं किया, बहुत गलतियां की जीवन में, जीवन का उद्देश्य क्या था, हमें क्या किया, कहां कहां समय व्यर्थ बिताया, उस समय सब स्मरण आता है, कितना समय व्यर्थ गया, इतनी बातें व्यर्थ की नहीं करता था, बहुत सारी बातें चल जाती थी, उस समय पश्चाताप, समय भी नहीं रहता। तो बुद्धिमान तो वो व्यक्ति है कि जो इस बात पे जो सब जानता है, हम सब जानते हैं, आप सभी ने बोला है जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का कर्म क्या कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागतः। संसिद्धिम परमागतः, इस श्लोक में क्या कहे भगवान, इस श्लोक में भी संसिद्धि कहे है। इस श्लोक में भगवान ने कहा है, कर्म नहीं वही संसिद्धिम अस्तिथा जनकादय, जनक जैसे कर्म अर्थात कर्तव्य कर्म करने से संसिद्धि प्राप्त है, अर्थात मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है, मनुष्य जीवन के जो मनुष्य हमें जिस कार्य के लिए भेजा गया है वो कार्य पूर्ण हो जाता है। कौन सा कार्य, कर्तव्य कर्म का, जनक ने जो किया है संसिद्धि,
उसी प्रकार से पंद्रहवें आठवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमागतः। यहाँ पे भी संसिद्धि है, यहाँ पे भी संसिद्धि है। यहाँ भगवान कहते हैं जो हमारा अभी श्लोक चल रहा है उसमें संसिद्धि अर्थात मनुष्य को जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है उस उद्देश्य को क्या हो जाता है, उस अच्छी तरह से वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अब ये क्या उद्देश्य है तो हम भगवान से, भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। भगवान आप सुनाओ, आपके मुख से डायरेक्ट सुनना चाहते हैं। तो भगवान इस पंद्रहवें श्लोक में, आठवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में डायरेक्ट बोलते हैं अपने मुख से, क्या कहते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वत, अर्थात मुझे प्राप्त करके जो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, अर्थात मुझे जो महापुरुष प्राप्त करता है जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस धरती पर या इस अनित्य जगत में लौटते नहीं। जो महापुरुष, जो भक्ति योगी महापुरुष मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो कभी भी अनित्य इस जगत में, जो अनित्य है इसमें ना वो कभी आते नहीं, ना अपनुवंती महात्मना वो कभी वापिस आते नहीं। माता जी ने बोला मुक्ति प्राप्त होती, परंतु किसको, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो महापुरुष भक्ति योगी है, जो भक्ति करता है भगवान की, जो भक्ति योगी है वो महापुरुष कभी भी इस दुखालयम अशाश्वतम ऐसे जगत में पुनर्जन्मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, इस पुनर्जन्म अनित्य जगत में उसका पुनर्जन्म नहीं था, क्योंकि क्योंकि संसिद्धिम परमागतः, क्योंकि उसको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब परम सिद्धि क्या है, पहला ही शब्द है उस श्लोक का, माम उपेत्य, ये परम सिद्धि है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमागता। तो क्या कहते हैं, मुझे प्राप्त करके जो भक्ति योगी महापुरुष कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में लौटते नहीं है। क्यों लौटते नहीं है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है, क्योंकि मुझे प्राप्त करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, भगवान को यदि हम प्राप्त करते हैं तो हमको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह है, इस श्लोक में जो संसिद्धि शब्द कहा गया है उसका अर्थ क्या है, जो अर्थात कार्य अच्छी तरह से पूर्ण करना। हमारा अच्छी तरह से कौन सा कार्य हमको पूर्ण करना है, माम उपेत्य भगवान को प्राप्त करने का कार्य हमको अच्छी तरह से करना है। इस दो श्लोकों को अच्छी तरह से समझिए, घर पे जाके पढ़ सकते हैं, आठवें अध्याय का पंद्रहवां श्लोक और चालू श्लोक, दोनों जगह पे भगवान ने एक ही बात कही। कई बार हमको ऐसे इस भगवत गीता में समझ में आएगा कि भगवान यही बात पिछले श्लोक का ही, कभी कभी पिछले श्लोक का ही आगे कहते हैं बहुत सारी बार, फिर अब ये श्लोक का फिर आगे कहते हैं, और इसको और क्लियर बहुत आगे दूसरे तीसरे श्लोक अध्याय के पश्चात हमको पता चलता है कि वहां भगवान ने इस बात को और क्लियर कहा। जैसा जैसा डिस्कशन, जैसा चर्चा आगे बढ़ती है भगवान और अच्छे से डिटेल में उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे वो आगे आएगा, यहाँ पे जो कहा है भगवान ने कि क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए, फिर भगवान कहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो वो कहेंगे आगे जाके क्या नहीं करना चाहिए। इस समय क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए, आगे क्या कहेंगे, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए, अच्छी तरह से कर्तव्य कर्म करना चाहिए। अब किस लिए ये कर्तव्य कर्म करना चाहिए, मां भगवान को, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। अर्थात यदि हमको भगवान मिल गए और हमने ये प्रश्न पूछा कि भगवान आप बताओ कि कौन सा बहुत ही अच्छा कर्म है हमारे लिए, कौन सा कर्म पूर्ण करने के लिए हमको इस मनुष्य जन्म की मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, तो भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अनुशासन। क्लियर क्लियर भगवान के मुख से आई हुई बात। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य जीवन की संसिद्धि अर्थात पूर्ण सफलता है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि नो रिटर्न टिकट एश्योर्ड, वन वे टिकट एश्योर्ड। भगवान ने कहा रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर हम कहेंगे अरे अरे हमको तो यहाँ मजा आ रहा है, हमको इसलिए यहाँ मजा आ रहा है क्योंकि जिस जगत में बहुत ही ज्यादा मजा आता है उस जगत का अभी तक हमने टेस्ट ही नहीं किया, उसका टेस्ट ही नहीं किया है, उसका सुनने के लिए लालायित भी नहीं है, उसके विषय में श्रवण करने के लिए हमारे अंदर उत्सुकता भी नहीं है। उत्सुकता से उस जगत के विषय में समझ लेंगे, श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तब ऐसा लगेगा कि नहीं यहां से, जैसे हम विरार में घर बांधते हैं, फिर कुछ क्षण के पश्चात ऐसा लगता है कि नहीं चलो अभी मीरा रोड बनेंगे, फिर विरार से मीरा रोड में आते हैं, फिर मीरा रोड से फिर कहते हैं नहीं नहीं अभी बोरीवली अच्छा है, फिर बोरीवली जाते हैं, फिर बोरीवली से कहते नहीं अभी अंधेरी अच्छा है, फिर अंधेरी में जाते हैं, रोज स्ट्रगल करते हैं, प्रयास करते रहते हैं, अंधेरी में भी जाके स्ट्रगल चालू ही है। अब कहाँ जाना है? बांद्रा जाना है, बांद्रा जाके फिर स्ट्रगल चालू ही है, चर्च गए नरीमन पॉइंट, वहां गए फिर भी स्ट्रगल चालू ही है, कहाँ जाना है? अमेरिका, दुबई, दुबई में स्ट्रगल चालू ही है कंटिन्यू, कहाँ जाना है? इराक,
फिर
आइलैंड लेना है, वहां जाके फिर कहाँ जाना है? कहीं पे भी जाओ रिटर्न तो आना ही पड़ेगा। यहां हम जाने का हमारी नित्य लोलुपता रहती है, उत्सुकता रहती है, इसका कारण क्या है? कारण कि उसके विषय में श्रवण करते रहते, समय देखे उन सब सबके विषय में श्रवण करते हैं, परंतु हमारा जो उसके भी ऊपर की जगत है जहां कोई सिविल वार नहीं होता, जहां किसी भी प्रकार का टैक्स आपसे वसूल नहीं किया जाता, इसलिए किसी भी प्रकार की चोरी हम नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई भी मत्सर द्वेष ईर्ष्या वहां पे कदापि नहीं है। जरा सोचिए ऐसा जगह जगत जहां प्रेम ही प्रेम है, कुछ भी नहीं होता है, भ्रमित करने वाली कोई भी बात वहां नहीं होती। विशेषकर मेरा मन जो है ना, वो मन बहुत ही सिद्ध अवस्था में रहता है, अन्यथा मेरा मन मुझे क्या बोलता है? जो गलत बातें हैं, जो भ्रमित करने वाली बातें हैं, मेरा मन क्या कहता है? मुझे यही बातें सत्य है, और जो असत्य बातें हैं उसको मेरा मन क्या कहता है? बोलता है यही सत्य है, और जो सत्य बातें हैं उसको कहता है असत्य है। मेरा मन क्या करता है? मुझे कन्विंस करता है। किस लिए कन्विंस करता है मेरा मन? इस जगत में ही यहां पे मेरे मन की दशा, चाहे अमेरिका जाए, चाहे चाहे दुबई जाए, चाहे आयरलैंड पे जाए, कोई कहीं पे भी जाए, मेरा मन क्या करता है? कन्विंस करता है मुझे किस बात के लिए? यदि मैं कितना भी गलत करता हूं, मेरे रॉन्ग डूइंग्स, मेरे अंदर ईर्ष्या द्वेष मत्सर काम क्रोध लोभ ये सब कुछ है, परंतु मेरा मन मुझे कन्विंस करता है नहीं 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 तुम बहुत अच्छे, चलने तो चलता है, क्या फर्क पड़ता है? तो इस जगत में मेरा मन क्या करता है? मुझे कन्विंस करता है किसके लिए? जो भ्रमित करने वाली बातें हैं, जो मुझे भ्रष्ट करने वाली बातें हैं, जो मुझे बंधन में डालने वाली बातें हैं, उसके विषय में मुझे कन्विंस करता है कि ये बहुत अच्छा है, और मैं कन्विंस हो जाता हूं और उसी दिशा में कार्यरत रहता हूं, ऐसे ही करता हूं। परंतु यदि वहां चला गया उस जगत में, तो मेरा सबसे पहली बात जो है मेरा मन, वो मेरा मन मुझे वो सब कुछ कहेगा जो मुझे बंधन में डालने वाला ही नहीं है, जो सत्य है। उस जगत में ऐसा मेरा मन का परिवर्तन हो जाता है। ये विशेष बात है, इस मन को परिवर्तित करने के लिए लाखों प्रयास कीजिए, करोड़ों प्रयास कीजिए, लेकिन कुछ समय के पश्चात थोड़ा सा एंजॉयमेंट का तो भाव आ ही जाता है, और हम उसको रैशनल भी कहते हैं, नॉट बैड, ठीक है। गृहस्थ के लिए शास्त्र ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। शास्त्र कहते हैं कोई बात नहीं, आप गृहस्थ हैं, कोई बात नहीं, बहुत फैसिलिटी दे रखी है। ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थी उनके लिए सब फैसिलिटी कहां है। गृहस्थ को बहुत ही फैसिलिटी दी है, परंतु उन सारे फैसिलिटी का मिसयूज नहीं करना चाहिए। गृहस्थ क्या करता है, एक फैसिलिटी दी तो कहता है कि और क्या फर्क पड़ता है, इसको तोड़ दिया। जिसको नहीं करना चाहिए उसको करने के लिए लाला ही करते हैं, उसको कहते हैं सूक्ष्म पाप, सटल सिंस। हमारे द्वारा सूक्ष्म पाप होते रहते हैं, क्योंकि ये सब जो सब कुछ बंधन कारक चीजें हैं उसको हम बंधन कारक नहीं मानते, सोचते थोड़ा देर चल जाएगा। लेकिन वो थोड़ी देर का जो समय होता है, थोड़ी सी जो देर होती है, उसमें हमारे मन के ऊपर 1 करोड़ संस्कार हो जाते हैं, 1 करोड़ संस्कार हो जाते हैं, उससे भी ज्यादा। और इसलिए फिर हमारा मन हमको नित्य क्या करते रहता है, जो नहीं है उसके प्रति, जो असत्य है, जो भ्रमित करने वाला है, उसके विषय में कन्विंस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म पाप हमारे मन के द्वारा होते रहते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा जीवन है, बहुत फैसिलिटीज है, लेकिन उन सारे फैसिलिटी को अच्छे से उपयोग में, अच्छे से उपयोग में लाना चाहिए। इतना मनुष्य शरीर मिला है, उसका उद्देश्य है कृष्ण की प्राप्ति, मुख्य उद्देश्य, बाकी सारे गौण उद्देश्य। लेकिन हमारे जीवन का उल्टा, तो मन ने हमको कन्विंस कर दिया, हमारे मन ने हमको क्या कर दिया, कन्विंस कर दिया। अब हम क्या सोचते हैं, कृष्ण की प्राप्ति ये गौण उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख, ऑफिस, कर्म, काम धाम सब, और कृष्ण की प्राप्ति गौण उद्देश्य। एक्चुअल क्या है, वास्तविकता क्या है, कृष्ण की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति प्रथम उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य, और इतर सारी जो प्राप्तियां है वो गौण है, सेकेंडरी है। लेकिन होता क्या है, एग्जैक्टली उल्टा, और इसी के कारण मन चंचल होता है। अब हम कितने भी दवाइयां खाएं, कितने भी ट्रैंक्विलाइजर, शांत मन को शांत रखने की मेडिकेशन करें, कुछ भी करें, लेकिन कहां गड़बड़ है, जो गलत, जो असत्य है, जो अनट्रू है, जो फाल्स है, उसको, उन बातों को हमारे मन ने क्या कर दिया है, हमारे मन ने स्वीकार कर लिया है और हमको कन्विंस कर दिया है, दिस इज द ट्रुथ, यही सत्य है। सोचिए इस बात, कितनी बार हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है, जीवन प्राप्त हुआ उसका उद्देश्य जो है, उसका जो मुख्य कार्य जो है, उसको सिद्ध करने के लिए प्रयास होता है हमारा दिन भर। दिन में तो छोड़िए, महीने भर में कितनी बार होता है, नहीं होता है, ठीक है, वो नहीं होता है कोई बात नहीं, परंतु जो असत्य है, जो एवर चेंजिंग, एवरी मोमेंट चेंजिंग, नित्य बदलते रहता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं, चंचलम है, उसके विषय में हम कितने कन्विंस है, ये बताइए, कितने कन्विंस है। इस ये क्लास शुरू हुआ तो 100 लोग आते थे रेगुलर, कुछ दिनों तक 100 लोग आए, फिर फिर 60 हो गए, अभी 50 हो गए, 50 रेगुलर है, उसमें भी कम है, 10-12 उसमें भी कम हो ही जाते हैं, 40-35-40 एवरेज 40। क्यों हुआ ऐसे? किस बात से बाकी के लोग कन्विंस हो गए? इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि यहां जाना कोई बहुत जरूरी बात नहीं है। बहुत जरूरी बातें तो बहुत सारी है, ये हुआ तो जाएगी, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं। बाकी सारे कर्म होते हैं, बाकी सारे काम होते हैं, परंतु ये आधे पौने एक डेढ़ घंटे का काम नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? देखो प्रायोरिटी, प्राथमिक, किसको हमने प्राथमिकता दी? हमारे लिए क्या बात बहुत महत्वपूर्ण, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? हमारा मन जिस जिन बातों से आवेग में रहता है, मेंटल एंजाइटी जिस जिन बातों के कारण बढ़ती है, उसको हम रेगुलेट करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए हम स्वयं ही तैयार नहीं रहते हैं, और फिर कुछ समय के पश्चात जब आवेग बहुत बढ़ जाते हैं, उसका रूपांतर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फ्रस्ट्रेशन, मेंटल एग्जॉशन, इन सब प्रकार की बातों में होता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब डॉक्टर कहते हैं क्या कहते हैं? ध्यान करो, मेडिटेशन करो, काम कम करो, थोड़ा शांति से रहो। कभी कभी डॉक्टर लोग आजकल बोलने लगे भजन सुनो करके, आजकल बोलते हैं भजन सुनो, तब हमको लगता है डॉक्टर ने बोला अब करना पड़ेगा। जब डॉक्टर बोलते हैं तब हम करना शुरू करते हैं, परंतु सोचिए वो स्थिति आने के पहले ही, उस स्थिति तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि पहले ही हम इन बात को समझ ले। अपने ही तो विषय में है ना, मेरे ही तो मन की मैं बात कर रहा हूं, मेरे ही तो शरीर की मैं बात कर रहा हूं, मेरे ही तो आत्मा बुद्धि की मैं बात कर रहा हूं, उसी को तो समझना है ना, किसी दूसरे के मन को थोड़ी समझना है, किसी दूसरे के बुद्धि को थोड़ी समझना है, अपने ही बुद्धि को समझना है, अपने ही मन को समझना है, अपने ही शरीर को समझना है, और इन सब को समझ के कर्तव्य कर्म करना है। और जब इस प्रकार से हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात सारे कर्तव्य कर्म सिद्ध हो जाते हैं। परंतु हम इस कर्तव्य कर्मों को सिद्ध करने के उपाय सारे संसार में ढूंढते हैं, 3 शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन फिर भी सिद्ध नहीं होता है। संसार में कितना काम हो रहा है सोच सकते हैं? पूरे संसार में कितनी इंडस्ट्रीज है, कितने लोग है, कितने काम कर रहे हैं, अर्थात पूरे संसार में कितना काम हो रहा है, 24 आवर्स काम हो रहा है, परंतु फिर भी मन शांत हुआ लोगों का? क्रिमिनल मेंटालिटी, वेश ईर्ष्या, गुनेगारी की प्रवृत्ति, ये सब कम हुआ? क्यों? इतना तो सब कुछ डेवलपमेंट हुआ है। जितना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री, जितना ज्यादा विकसित देश, उतना ज्यादा क्रिमिनल रेट है वहां पे, क्राइम रेट है। ये सब जगह का एनालिसिस आप देखिए पढ़े, सब जगह
बच्चे लोग स्कूल में,
बच्चे लोग स्कूल में फायरिंग कर देते हैं। अब बताइए
माँ बाप को लगते वापिस आएंगे कि नहीं? अभी एक आया था
आएंगे, क्यों हुआ ऐसे? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हो रहा है? अब भारत में भी हो रहा है वो, अभी हम लोग कोई अननोन नहीं उन बातों से, तो भारत में भी हो रहा है, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे मर्डर करने वाले, क्राइम रेट बढ़ गया। क्यों हो रहा है ऐसे? जब व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक जाता है तब वो पागल हो जाता है, पागल हो जाता है अर्थात उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, उद्देश्य से भटक जाता है। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 1 नाक, ये ऐसा शरीर वर्टिकल ऐसा ही क्यों प्राप्त हुआ है? कोई कहे काम करने के लिए, तो काम तो कुत्ते भी करते हैं, गधे भी करते हैं, दे आर हॉरिजॉन्टल, You are vertical. There is some difference. क्या अंतर? कुछ उद्देश्य में भी फर्क है कि नहीं? केवल कर्म 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 सभी करते हैं, हम लोग विशेष है, मनुष्य विशेष है। और वो कर्तव्य कर्म जो करेगा, वो कर्तव्य कर्म को जो समझेगा, वो कर्तव्य कर्म को समझ के अच्छी तरह से संसिद्धिम जो करेगा, उसको परम गति प्राप्त होगी। अर्थात ही विल बी हैप्पी होल लाइफ, हैप्पी लाइफ, आनंद का जीवन प्राप्त। ऐसे कितना भी बड़ा बनिए, कोई आनंद का जीवन प्राप्त नहीं होगा। वो हमारा मन कन्विंस करते जाएगा, हम कन्विंस होते जाएंगे, अगले स्टेज में पता चलेगा कि नहीं नहीं वो तो सब गड़बड़ निकला। फिर कन्विंस हो गए, फिर मन हमको कन्विंस करेगा, फिर मन भी कन्विंस होगा, फिर कुछ समय निकलेगा, 5-7 वर्ष निकल जाएंगे, फिर हमको लगा अरे नहीं नहीं ये भी गड़बड़ निकला। फिर 10-12 वर्ष निकल जाएंगे, फिर कन्विंस करते करते पूर्ण जीवन पता चलेगा, अंतिम समय पूर्ण जीवन क्या हो गया, भ्रम में निकल गया, इल्यूजन में निकल गया, कंफ्यूजन में निकल गया। बहुत है। सबसे पहले व्यक्ति का क्या होता है? सबसे पहले व्यक्ति संशय करता है। पिछले समय हो गया, पहले अध्ययन में संशय करता है व्यक्ति। किस पे संशय करता है? अपने आप के ऊपर, मैं आत्मा हूं इस बात पे पहला संशय नहीं। सब लोग मानते मैं आत्मा हूं, नहीं मानते संशय सस्पेंशन, क्या कहते हैं, सस्पेंस में रखते हैं संशय। वो संशय बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जितना संशय बढ़ते जाएगा, फिर कंफ्यूजन शुरू होगा। संशय के कारण, सस्पेंशन के कारण कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। कंफ्यूज स्थिति में कई समय तक रहेंगे, 6-8 महीना, वर्ष, साल, 2 साल, कंफ्यूज, स्टिल कंफ्यूजन। बहुत समय कंफ्यूजन में निकल जाए। एक कंफ्यूजन कई समय तक, बहुत समय तक जब रहता है, तब व्यक्ति इल्यूजन में चला जाता है। सस्पेंशन, कंफ्यूजन एंड इल्यूजन, एक में घुसा कि बाकी अपने आप आ जाते हैं। और फिर जो इल्यूजन जो फैक्टर है, अर्थात भ्रम, ये जीवन भर अपना साथ देता है। और इसी के कारण, इन बातों के कारण ही हम कर्तव्य कर्म को चूक जाते हैं, क्योंकि मन हमको कन्विंस करते हैं, मन का स्वभाव है कन्विंस करना, कन्विंस करते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो यहाँ पे भगवान कहते जनक आदय, नियत कर्मों के द्वारा, जनक आदि राजाओं ने नियत कर्मों के द्वारा ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त की है। जनक आदि राजाओं ने क्या किया है? परम सिद्धि प्राप्त की। कैसे? अपने ड्यूटी करके, अपने कर्तव्य कर्म करके। उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म किए, जनक राजा ने। तो जनक राजा ने कर्तव्य कर्म किया, इसलिए संसिद्धि प्राप्त हुई। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जनक आदि ने, यदि जनक महाराज ने अपने नियत कर्मों के द्वारा यदि वह परम सिद्धि प्राप्त की, तो उन्हें यह उपदेश दिया किसने? अभी यहां तो अर्जुन को कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। परम सिद्धि प्राप्त हुई जनक महाराज को, बराबर भगवान कहते हैं, परंतु उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई, उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म किए, परंतु यह उनको उपदेश दिया किसने उस समय? अर्थात आवश्यक है, क्या आवश्यक है? गुरु और शास्त्र आवश्यक है। शास्त्र का ज्ञान गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, संतों के द्वारा प्राप्त। सुप्रीम कोर्ट के जज आपको भागवतम और भगवत गीता का ज्ञान नहीं दे सकते। किससे प्राप्त होगा? वो गुरु, साधु, भक्त, वैष्णव, उनके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त हो सकता। तो जनक आदि को कैसे प्राप्त हुआ? गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ। तो जनक महाराज का इतिहास यदि श्रीमद् भागवतम आप देखते हैं, तो भगवत गीता में भी आप देखेंगे चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं क्या, भगवान कहते हैं मैंने यह ज्ञान सर्वप्रथम किसको दिया, सूर्य देव को दिया, फिर मनु और फिर इक्ष्वाकु, विवस्वान मनु और इक्ष्वाकु, विवस्वान सूर्य देव को दिया, फिर सूर्य देव के पुत्र या उनके शिष्य जो पुत्र शिष्य बने उनके शिष्य मनु को दिया, और मनु ने वो किसको दिया, इक्ष्वाकु को दिया। अर्थात भगवान ने ये ज्ञान तब से देना शुरू किया। अब आप इसी बात को भागवतम से कनेक्ट करेंगे। भागवतम के 9वें स्कंद में बताया है इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे और ये इसमें से एक थे जो महाराज निमि, निमि नाम के, आपने सुना है महाराज निमि उनके एक पुत्र थे और वो शिष्य भी थे। अर्थात इक्ष्वाकु महाराज अपने पिता से ही ज्ञान लेते थे, वेदों का शास्त्र का ज्ञान। अब महाराज निमि ने क्या किया, अपने ही कुल के जो कुल पुरोहित है कौन, वशिष्ठ मुनि, किसी कारण उनके अंदर उन्होंने कुछ दोष देख लिया, कुछ दोष देखा उन्होंने वशिष्ठ मुनि में और उनके द्वारा किसी विधि को करने के लिए मनाही कर दिया। गुरु वशिष्ठ बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने महाराज निमि को श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा मृत्यु हो जाए, और उनके श्राप के कारण महाराज निमि का मृत्यु हो गया, वो शरीर वहीं पड़ा रहा जीवात्मा, और वो शरीर पड़ा रहा, परंतु निमि बहुत ही धर्मात्मा थे, इक्ष्वाकु के पुत्र थे, धर्मात्मा थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, इसलिए उस राजा को, उस राज्य को चलाएगा कौन, इस विचार से उस समय सारे ऋषिगण एकत्रित हुए। उस समय ऐसा कुछ इमरजेंसी आता था तो कौन एकत्रित होते थे, अब कौन एकत्रित होते जिनको कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं है, क्वालिफिकेशन मेन यही है, शास्त्र का ज्ञान जीरो होने वाले को पहले बुलाओ, उनसे एडवाइस लो। उस समय क्या होता था, शास्त्र का ज्ञान अर्थात इस प्रकृति का ज्ञान, इस प्रकृति के घटक कैसे कार्यरत होते हैं, क्या किया तो कौन से घटक पे क्या असर होगा, ये सारा ज्ञान जिन ऋषि मुनियों को होता था वो सारे एकत्रित होते थे। अभी तो न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देते और फिर सोचते कि अभी क्या होगा, तो पहले ज्ञान है ही नहीं प्रकृति के ऊपर, उसका क्या असर पड़ेगा, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये शक्ति क्या है, उसको पता ही नहीं, पहले डाल देते सब कर देते फिर सोचते अभी क्या होगा, अभी इलाज ढूंढो, कहां से इलाज ढूंढेंगे, फंसो मरो, है ना। समुंदर में ऑयल फील्ड से, ऑयल वेल से गुस्सा क्रोध आ गया, ऑयल वेल्स को ब्लास्ट कर देते, समुद्र का पानी दूषित हो जाता है, वही पानी ऊपर ऊपर जाता है वही नीचे आता है, दूषित हवा आएगा, दूषित पानी आएगा, दूषित सब कुछ दूषित हो जाएगा, लोग मरेंगे, फिर बोलेंगे क्या कहेंगे, ये तो कलयुग है, ये तो भगवान ने ऐसा किया है, तो भगवान ऐसा क्यों कर, भगवान को दोष दे, लेकिन सोचेंगे नहीं। इसलिए शास्त्र के जानकार ऋषि मुनिगण ये सब सोचते हैं, वो प्रकृति के प्रत्येक घटक का विचार करते हैं, विषाणु जीवाणु तक का विचार करते हैं, परंतु यहां पे इस समय वैसा नहीं होता है, इसका कारण है ऋषि मुनियों की कमी। तो सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए, उन्होंने सोचा ये बहुत धर्मात्मा राजा थे, ऐसा नहीं कदापि सोचना चाहिए कि ऋषि मुनि को केवल अर्थात प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं होता है, उनको तो प्रकृति का पूरा ज्ञान है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा ये दिव्य शरीर है, इस व्यक्ति ने जीवन भर धर्म का कार्य किया है, इसलिए इसके शरीर में धर्म का प्रभाव है, भले ही मटेरियल है परंतु इसके ऊपर धर्म का प्रभाव हुआ है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उस शरीर का मंथन चर्निंग शुरू किया, डेड बॉडी का, शरीर का मंथन किया, उनको पता था कैसे करना चाहिए, अभी नहीं है लोगों को पता, कितना भी साइंटिस्ट होने दो उसको नहीं पता, उन लोगों उन ऋषि मुनियों ने उस शरीर का मंथन किया, चर्न किया, चरण कर करके उसमें से ऐसे शरीर की निर्मिति, एक शरीर की निर्मिति की और फिर भगवान की आराधना ध्यान तपस्या की, उस शरीर में प्राण प्रस्थापित हो गया और वो थे महाराज जनक। श्रीमद् भागवतम के स्कंद में है, नवे स्कंद में आता है इसका पूरा वर्णन, आप वो पढ़ सकते हैं बहुत विस्तृत रूप से। परंतु यहां के लिए इस प्रकार से जनक महाराज का क्यों उल्लेख किया गया उसका हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उनको चरणिंग करके जनक महाराज का जन्म हुआ। अब जनक अर्थात जनक इस नाम को क्यों रखा गया? जनक का शब्द है जन्म देने वाला। किसको जन्म दिया उन्होंने? निमि महाराज, इक्ष्वाकु, मनु, इक्ष्वाकु, निमि, ये खत्म हो गया था वंश, इस वंश को जन्म देने वाले हैं इसलिए उनको जनक कहा, है ना। फिर उनका मिथिलेश या मिथिल ऐसे भी नाम, मिथिल नरेश या मिथिलेश कहते हैं। मिथिल क्यों कहा गया? मैथिली क्यों नाम रखा गया? क्योंकि मंथन करके उनका जन्म। तो इस प्रकार से वैदेह भी कहते हैं, जैसे माता सीता को वैदेही कहते हैं, तो वैदेह कहते हैं। वैदेह क्यों? जो ऐसे देह से उत्पन्न हो गए जिस देह में आत्मा नहीं, अर्थात जो मृत देह था वही देह, देह तो था परंतु विदाउट सोल, अर्थात वह देह जो मृत अवस्था प्राप्त कर चुका था, ऐसे देह सा जिस देह से जिसका जन्म हुआ वह वैदेह, और उनकी कन्या है वैदेही। सीता, माता सीता का एक नाम क्या है? वैदेही, है ना, आपने सुना है सभी ने, तो वैदेही। तो इस प्रकार से जनक महाराज का जन्म हुआ और उनके वंश परंपरा में, वह जनक महाराज के वंश परंपरा में बाद में जितने भी आए उनके पीछे, उनके पश्चात, उन सभी का नाम जनक ही रखते थे। क्यों? क्यों जनक? क्योंकि वास्तव में वो जनक ने जो कार्य किया वो ये आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके सभी इसमें है, सभी के उनके वंशज जितने भी हुए उस जनक महाराज के, निमि के जो पुत्र थे उनके जितने भी आगे पुत्र हुए, वंशज हुए, वो सबका नाम जनक ही रखते हैं। और माता सीता के जो पिताजी थे महाराज जनक, उनका नाम था शिरध्वज जनक। ऐसे जितने भी जनक हुए उनको जनक तो कहते थे पर उनके आगे एक नाम रहता था उनका, जो भी नाम। तो माता सीता जी, सीता के जो पिताजी थे जनक महाराज, वो एक्चुअली उनका पूरा नाम है शिरध्वज जनक। और ये निमि का जो पहले जो जनक महाराज थे वहां से 21वें नंबर के 21वें वंशज महाराज। और ये इनके वंशज में जितने भी जनक हुए ये सारे के सारे जनक क्या थे? कर्तव्य कर्म में परायण थे, संसिद्धि महात्मा थे, पूरे जीवन भर संसार में रहे, सांसारिक जीवन बिताया पूर्ण जीवन भर, परंतु संसिद्धि, फिर भी सिद्धि को प्राप्त किया। किसी ने यह सोचना नहीं चाहिए कि भगवान की प्राप्ति, परम सिद्धि, ये सक्सेस, यश, आनंद प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना, ऐसा कदापि नहीं। या भगवद गीता का श्रवण, भगवद गीता को सुनने के लिए साधु बनना पड़ता है, या भगवद गीता हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहां पे फेल हो जाते हैं। शास्त्र कहता है, जनक महाराज से हमको पता चलता है कि भगवद गीता यह विशेषकर गृहस्थों के लिए, जो सांसारिक जीवन में बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, सांसारिक जीवन जीना चाहता है, अपने कर्तव्य कर्म अच्छे से करना चाहता है, परिस्थिति को समझ के जो कर्तव्य कर्म करना चाहता है उसके लिए भगवत, इसलिए महाराज जनक का उन्होंने उदाहरण दिया है। भागवतम के नवे स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी ने जनक वंश के समस्त राजाओं का वर्णन करने के पश्चात परीक्षित महाराज से एक बात कही, वो कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जनक वंश में समस्त राजा आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीण थे, आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए नित्य लालायित, भगवान की कृपा से इस संसार में रहते हुए भी वे इस संसार के द्वंद्व से मुक्त थे। सारे जीव इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के प्रजल्प से मुक्त थे। हम कितना भी इस संसार के प्रजल्प से मुक्त रहना चाहें, कोई ना कोई हमको फंसा ही देता है। कहीं ना कहीं कोई ऐसा मिल जाता है जो हमारे मन में कुछ ऐसी बात छोड़ के चला जाता है। इतनी एक सेकंड के लिए मिलेगा चेहरे पे चेहरा दोस्त, एक सेकंड के लिए, लेकिन कुछ एक बात ऐसी छोड़ देगा पिचकी। हम पूरा समय उस बात पे भ्रमित रहे। वो चला गया अपना अपना इधर मंथन शुरू हो गया और वो चले गए अपने काम में लग गए। साल भर मिले भी नहीं, साल दो साल कभी फिर से मुलाकात भी नहीं हुई, परंतु हमारा मंथन अभी भी चल रहा है। सो ऐसे द्वंद्व में हम फंस जाते हैं, परंतु ये इतने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तत्पर रहते थे, पटु थे उसमें, इसलिए इनकी दशा क्या थी, ये संसारिक द्वंद्व में फंसते नहीं थे। वो कितना भी फंसाने के लिए आ जाए अपना कर्तव्य कर्म करते, ऐसा नहीं है कि सन्यासी बन गए, बिल्कुल नहीं। राजा थे, राजा अर्थात ऐसा व्यक्ति जो संसार की सारी भौतिक वस्तुओं का भोग करता है। उसको कोई अपूर्ण बात नहीं है, सब कुछ है उसके पास, परंतु फिर भी द्वंद्व में नहीं फंसते। संसार में रहते हुए द्वंद्व में नहीं फंसते। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर प्रवचन किया था, तो प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं, तो आपको अपने कर्मों का त्याग नहीं करना है। ये गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग अपने माइंड से निकाल के फेंक दीजिए कि कोई भी आध्यात्मिक कार्य अर्थात अपने कर्मों का त्याग नहीं। गोपाल जी कहते हैं, तो आपको अपने कर्मों का त्याग नहीं करना है, अपना कर्तव्य कर्म करो, परंतु अपने जीवन का लक्ष्य यह बना लो कि मेरा असली कार्य क्या है। मेरा असली कार्य है आत्म साक्षात्कार, मेरा अपना साक्षात्कार, मेरे आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन और फिर भगवान का दर्शन। क्योंकि यह यदि हो जाता है तो बाकी सारे दर्शन कितने झूठे हैं यह पता चल जाता है, और फिर इन दर्शनों में हम फंसते नहीं है। हमको फंसाने वाले तो ये दर्शन ही है ना, है कि नहीं? दर्शन कर लिया एक बार की फंस गए, मोहित हो गए, ये दर्शन ही हमको फंसाते हैं। इसलिए यदि हमारा आत्म साक्षात्कार हो गया, हमने अपने आत्मा का, स्वयं का आत्मा का दर्शन कर लिया, आत्म साक्षात्कार पाया, तो हमको भगवान भगवत दर्शन तक हम जा सकते हैं। और फिर हमको क्या भ्रमित करने वाला है, क्या भ्रमित करने वाला नहीं है, इसका ज्ञान।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
गोपाल जी आगे कहते हैं, आपके जीवन में इस बिंदु को महत्व दीजिए, इस बात को इंपॉर्टेंट बनाइए, वेरी इंपॉर्टेंट बनाइए, VIMP अपने जीवन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने जीवन में बनाइए, बहुत महत्व का। इस प्रकार यदि हम करते हैं, इस प्रकार जीवन यापन करते हैं, इस बात को यदि अतिशय महत्व का बना लेते हैं, तो हम पूर्णता के स्तर पर आ सकते हैं, हमको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं, जहां मिलता ही नहीं है आनंद, कहाँ ढूंढ रहे हैं, जहां मिलता ही नहीं, कितना भी ढूंढो, कितना ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के थक जाओ, वहां मिलता ही नहीं है। जहां मिलता नहीं है वहां ढूंढोगे तो सब्जी बाजार में डायमंड खरीदने जाओगे, मिलेगा क्या? डायमंड मार्केट में जाना। सो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, इस बात को महत्व का बनाइए अपने जीवन में, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहते लोक संग्रहम एवं अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि, लोक शिक्षा को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए।
लोक संग्रह अर्थात सामान्य लोगों को शिक्षा देने के, शिक्षित करना। राजा अपनी प्रजा को यह शिक्षा देता है कि कर्तव्य कर्म किस प्रकार किए जाए, ये राजा का काम है। राजा क्या करता है, अपनी प्रजा को यह शिक्षा देता है कि किस प्रकार ड्यूटी की जाती है, किस प्रकार कर्तव्य कर्म किए जाते हैं, ये राजा का कार्य है। राजा ही यदि कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो प्रजा क्या करेगी, प्रजा क्यों कर्तव्य कर्म करेगी, प्रजा कदापि कर्तव्य कर्म नहीं करेगी। राजा का कर्म है कि अपना कर्तव्य पालन कीजिए। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण करते हैं, अर्थात जो इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त की हुई, जो इस प्रकार से पूर्णत्व में जो परफेक्ट है, जो कृष्ण कॉन्शियस है, वो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म इस प्रकार से करते हैं कि अन्य लोग उनको देख देख कर ही उनका अनुसरण करते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें, चाहते हैं, सोचते हैं, कभी कभी नहीं चाहते, लेकिन उनको कभी कभी लगता है कि अरे ये अपने बाजू में हरे कृष्ण वाला रहता है, बहुत सात्विक अन्न खाता है, मैं कितना बेकार खाता हूं, एक आध दिन इसके जैसा खा के देखता हूं। इतना तो प्रयास करेगा, या कभी अरे ये व्यक्ति हरे कृष्ण बोलते रहता है, एक आध बार मैं भी बोलू क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अपने आचरण से और आचरण से ही सिखाया जा सकता है। और यदि हम यह सोचे कि नहीं आचरण से सिखाया नहीं जा सकता, तो यह बात लिख लीजिए कि फिर सिखाया ही नहीं जा सकता, वो शिक्षा नहीं होती, वो थ्योरी होती है, इट इज नॉट शिक्षा। शिक्षा किसको कहते हैं, जिसके कारण जीवन में बदल होता है। और यदि हम आचरण के द्वारा ये सिखा नहीं सकते हैं तो 100% श्योर परिवर्तन नहीं, तो सिखा ही नहीं सकते। आजकल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट में पूरा सिखाया जाता है और बच्चे सीखते हैं। चरित्र में कितना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्यों नहीं होता है, आचरण से सिखाया नहीं जाता, थ्योरी सिखाई जाती है। थ्योरी सिखाने को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, वो केवल एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है, जानकारी है। लेकिन सुदृढ़ ज्ञानी परफेक्ट व्यक्ति कौन है, परफेक्शन किसको कहा जाता है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसका आचरण, जिसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, अस्ताव्यस्त जीवन जी रहे, बहुत ही सब कुछ प्राप्त किए हैं, सक्सेसफुल हो गए मटेरियल लाइफ में, लेकिन क्या है, अस्ताव्यस्त जीवन, कभी भी उठते कुछ भी खाते हैं, कुछ ठिकाना ही नहीं, जिस कभी 2 बजे खाते हैं, शाम को 5 बजे ब्रश करते हैं, अस्ताव्यस्त जीवन है। ये काम तो कुत्ता, गधा, बिल्ली, भैंस, बैल सब यही काम करते हैं। सो व्हाट इज द सक्सेस, वेयर इज द सक्सेस। अच्छा, उनको देख के हमको क्या मिलेगा, प्रेरणा क्या मिलेगी, सो नो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या शिक्षा दे सकते, कुछ नहीं। इसलिए अपने जीवन में वैल्यू एडिशन करना चाहिए, वैल्यूज को ऐड करना चाहिए, वैल्यू एडेड एजुकेशन उसको कहते हैं शिक्षा, वैल्यू एडेड एजुकेशन आजकल कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं शिक्षा, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विचार में बदल हो जाता है, समाज एक स्टैंडर्ड लाइफ हो जाता है, प्रत्येक व्यक्ति शांत अर्थात संतुष्ट होता है, बुद्धिमान होता है, क्या करे क्या न करे उसको पता चलता है, वायलेंस कब करना है, हिंसा कब करना है, हिंसा कब नहीं करना है, उसको पता चलता है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से परफेक्शन प्राप्त करता है कृष्ण कॉन्शियस से, उसका लोग अनुसरण करते हैं। और पहले अध्याय के 31-32 श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, मैं न तो राज्य पाना चाहता हूं, ना मैं इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूं, मुझे ना इंद्रिय तृप्ति चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, फिर मुझे इस युद्ध की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर इसका उत्तर है श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यह युद्ध न तो राज्य पाने के लिए कर रहे हो, न तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो, न धन एकत्रित करने के लिए कर रहे हो, तो फिर किस लिए कर रहे हो? सामान्य जनता को एक प्रकार की शिक्षा देने के लिए, शिक्षण ज्ञान देने के लिए तुम यह कर्तव्य कर्म कर रहे हो। क्योंकि ऐसे स्थिति में एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होता है जब यह तुम प्रदर्शित करोगे सामान्य जनता को, तब जाके सामान्य जनता उस क्षत्रिय के कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाए। तुम क्या कर रहे हो ये कार्य करके? सामान्य जनता को शिक्षित कर रहे हो। उसका उत्तर भगवान ने इस श्लोक में दिया है। तो सामान्य लोगों की शिक्षा, शिक्षित सामान्य लोगों को शिक्षित करने के दो प्रकार होता हो जाता है। साधारणतः समाज को बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, और दूसरी बात क्या है, उचित कार्य का स्वीकार करना और अनुचित कार्य का त्यागना। ये दो बातें विशेष भगवान ने यह बात, भगवान श्री कृष्ण ने यह बात बहुत अच्छी तरह से की थी जब वो शांति संदेश लेके धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन के पास पहुंचे। बहुत ही प्रेम से और बहुत ही विनम्रता से भगवान ने महाराज धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को प्रार्थना की कि जो हुआ सो जाने दो। हे महाराज, हे कुरुश्रेष्ठ, आप तो दयालु हैं, आप तो सब जानते हैं, आप तो दया कर सकते हैं, आप दया कीजिए, जो हो गया वो भी भूल जाइए, उनको थोड़ा सा अधिकार दे दीजिए, वो आप ही के तो है, आपकी ही तो भाई के पुत्र है, उनका तो स्वीकार कीजिए ना। इतना प्रेम से, परंतु जब प्रेम से वो बात का स्वीकार नहीं किया गया था दुर्योधन के द्वारा, और दुर्योधन की उद्दाम दुर्योधन का स्वभाव और बढ़ने लगा, क्रूरता बढ़ने लगी, अहिंसा हिंसा बढ़ने लगी, अधर्म बढ़ने लगा, और उस प्रकार से वार्तालाप को करने लगा जिसमें पूर्णतः उसका अहंकार दिख रहा था, तो भगवान को समाज को बताना था क्या उचित है क्या अनुचित। तब भगवान ने इस प्रकार से वार्तालाप की धृतराष्ट्र की उस सभा में, क्लियर भगवान ने बताया किस प्रकार पांडु पुत्र श्रेष्ठ है और किस प्रकार तुम्हारा ये पुत्र दुर्योधन एकदम अधर्मी है। और फिर अंतिम वाक्य में कहा कि हे मूर्ख दुर्योधन, तुम्हारा अंत निश्चित है, तुम क्या कर सकते हो करके दिखाओ, मुझे पकड़ना चाहते हो पकड़ो, आओ दिखाओ कितनी अनुचित कार्य कर रहे हो, कितनी शक्ति है तुम्हारे पास दिखाओ। अनुचित कार्य करने वाले की किसी की भी शक्ति भगवान बर्दाश्त नहीं करते, कहते दिखाओ कितने दिखाना चाहते। इस प्रकार से भगवान ने उस समय उचित और अनुचित कार्य जो है एकदम सही तरीके से उस राज्यसभा में सभी को समझाया। उसके कारण पूरे समग्र सृष्टि पे, पूरे इस भारत वर्ष में, सारे ब्रह्मांड में यह बात निश्चित हो गई कि दुर्योधन अनुचित है और दृष्टि और पांडव पुत्र सब उचित है। ये कार्य किया और इससे फिर बागे भगवान ने यह शिक्षा दी कि भगवान हमेशा उचित के ही धर्म के ही साथ है। और फिर कहा कि उचित का स्वीकार करो। सारे राजाओं को कन्विंस किया कि किस प्रकार वो अनुचित है, उचित और अनुचित क्या है, और फिर सबको कहा और सभी कन्विंस हो गए कि नहीं, युधिष्ठिर उचित, समाज को शिक्षा मिल गई। तो यह कार्य होता है राजाओं का, समाज को उचित और अनुचित का ज्ञान मिले और फिर अनुचित को नष्ट करे और उचित को, उचित का प्रसार प्रचार। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यही कहना चाहते हैं कि तुम समाज को शिक्षित करने के लिए तो कम से कम तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का पालन करो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय।